बीबीसी इंडिया बोल 25 मई दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के क्या है मायने? क्या मोदी अब बीजेपी से बड़े हो गए हैं? क्या मोदी ने राजनीति का व्याकरण वाकई बदल दिया है? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय। लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आकर सबसे पहले संविधान के आगे नतमस्तक हुए और इसके बाद एनडीए के सभी दलों का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई भी हमारे लिए पराया नहीं हो सकता।
अच्छा, तुम्हारे गांव वाले मेरे साथ ये किया था। जनप्रतिनिधि को ये सोचने का हक नहीं होता है। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व तो होता है और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 दिन के सरकारी दौरे के तहत जापान पहुंच गए हैं। वो सम्राट नारुहितो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता बनने जा रहे हैं। नारुहितो ने इसी महीने गद्दी संभाली थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी उनकी मुलाकात होगी, जिसमें वे द्विपक्षीय व्यापार और उत्तर कोरिया को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अमरीका और जापान अभी कारोबार को लेकर पेचीदा वार्ता में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने जापान से कार आयात पर शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। जापान पहुंचने के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो नया समझौता होगा उससे दोनों देशों को फायदा होगा। आप जानते हैं कि अमेरिका और जापान द्विपक्षीय कारोबार को लेकर समझौता करने को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। मैं कहूंगा कि जापान तो बहुत सारे सालों तक फायदे में रहा है, मगर ठीक है, शायद इसी कारण आप हमें इतना पसंद करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि चीजें थोड़ी और बेहतर हों और मुझे लगता है कि हम ऐसा करने में कामयाब रहेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन में अमरीकी राजदूत ने चीनी सरकार से निर्वासित तिब्बती बौद्ध नेता दलाई लामा के साथ वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। टेरी ब्रैंडस्टेड ने यह बात तिब्बती स्वायत्त प्रांत में एक हफ्ते तक चीनी सरकार के मेहमान के तौर पर समय बिताने के बाद कही। अपने बयान में ब्रैंडस्टेड ने कहा कि चीन को 83 वर्षीय दलाई लामा के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए और तिब्बती बौद्धों को अपने धर्म का आजादी से पालन करने की इजाजत देनी चाहिए। चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला कर दिया था। 9 साल बाद चीनी शासन के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने अपने पहले भाषण में जनता से कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और देश को अमीरों के हवाले नहीं करेंगे। राजधानी में रामफोसा ने कहा कि देश में लोकतंत्र के स्तंभ कमजोर हो चुके हैं और संसाधनों को लूट लिया गया है। उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन लाने का वादा किया है। ये रामफोसा का पहला पूरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वो पिछले साल उस समय राष्ट्रपति बने थे जब जैकब जुमा को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद छोड़ना पड़ा था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में एक विद्रोही संगठन अपने 3 सदस्यों को प्रशासन के हवाले करने जा रहा है। इन पर देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक गांव में 50 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने 20 से अधिक लोगों के साथ हमले को अंजाम दिया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811 7000 और 1811 7001। नंबर्स एक बार फिर दोहराते हैं आपके लिए, 1811 7000 और 1811 7001। बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा के केंद्र में हैं नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में शानदार तरीके से वापसी की है।
आसमां में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
ये सूरज कुछ इस तरह से निकला है कि विपक्ष के आसमान पर मानो घटाटोप अंधकार सा छा गया है।
बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 50% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, करारी हार। देश भर के अंदर 17 यूनिट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को बीग जीरो मिला है।
भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और विपक्ष की करारी हार ने कई सवालों को जन्म दिया है। इनमें ये सवाल भी शामिल है कि क्या मोदी ने राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया है, क्या मोदी अब बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं। ऐसे और भी सवाल होंगे आगे चर्चा के दौरान। स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करने से पहले अंबिकानंद जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो दमकता चेहरा है वो सामने ना होता तो बीजेपी को इतनी सीटें मिल पाती जैसा कि उसने अभी प्रदर्शन किया है?
ये कमाल मोदी जी का है। और आपने बड़ा सुंदर कहा कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो गए हैं। देखिए, मोदी जी ने मंच से भी कहा था कि कमल का हर बटन जो आप दबाएंगे वोट मोदी जी को जाएगा, और ये सच है, ये सच है। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने बहुत मेहनत किया अमेठी में, मैं आपसे बताऊँ वहाँ भी हर व्यक्ति जो वोट दिया कमल पे वो मोदी को वोट था। लेकिन इसमें एक ख़तरा है सोनी जी, कहीं व्यक्तिवाद दोबारा हिंदुस्तान में हावी ना हो जाए प्रजातंत्र में। ऐसा हमने इंदिरा जी के ज़माने में देखा था जब व्यक्ति हावी होता था। और इसमें आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि विपक्ष भी अंधकार में डूब गया है, तो विपक्ष स्वयं जिम्मेदार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चमकता दमकता नेतृत्व है मोदी जी का, वो उनको इशू बना रहे थे। विपक्ष बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की बदहाली, इसको छोड़कर वो भी मोदी जी को इशू बना रहे थे। और इसमें मोदी जी की चमकदार जीत हुई है जी।
वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस समय शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं अजीत सारथी। इशारा कर रहे हैं कि पहले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कीजिए। आज हमारे साथ पहले श्रोता कौन है इस समय जी, अपना परिचय दीजिए। हेलो।
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
मैं मोहन सिंह काजड़ा, जिला झुंझुनू, राजस्थान, काजड़ा की धनी से बोल रहा हूँ
जी। बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। क्या लगता है मोहन जी आपको कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अभी बीजेपी को सीटें दिलाई हैं लोकसभा के चुनाव में, जिस तरह से प्रचंड बहुमत हासिल किया है, क्या ये बीजेपी की जीत है या नरेंद्र मोदी की जीत है, या बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा बड़े हो गए हैं?
इसमें आपको बताऊं क्या, मैं आपको कहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट को 303 सीट जीती है ना इन्होंने
जी,
इनमें किसी भी कैंडिडेट को किसी ने भी वोट नहीं दिया, सिर्फ मोदी को दिया। और दूसरी बात कि वो एक गाना है तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खींचे आते हैं, तो बिना डोर पूरी पब्लिक खींची आई मोदी जी की तरफ से। और फिर रही दूसरी बात के पिछली बार 282 सीट मतलब थी तो तीन आदमी इसका पांव खींच रहा था, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और आडवाणी, तो उनसे भी छुटकारा मिल गया अब की बार इनको एक नया बोल्डर मिला। मैं क्रिकेट की भाषा में कहता हूँ जो मोदी जी का पूरा साथ दिया जो अमित शाह है ना, उन्होंने मैं जैसे वो घटोत्कच था ना महाभारत में वैसा काम किया अमित शाह ने।
हम अपने श्रोताओं से ये आग्रह करेंगे कि भाषा की मर्यादा को बरकरार रखते हुए अपनी बात रखें। और अगले श्रोता के पास जाने से पहले अंबिकानंद जी, आंकड़े ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी बढ़ी
जी,
किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी
जी,
औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई
जी,
लेकिन फिर भी आम लोगों ने मोदी को चुना, ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसा फर्क हुआ इस नतीजों का? ये
देखिए ये ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मोदी जी की और अमित शाह की रही। मैं आपसे बताऊं कि मैं तो उत्तर प्रदेश को, बिहार को, जहां का जिक्र अभी आदरणीय अमित शाह जी कर रहे थे, मैं समझता हूं आज के दिन में इन दोनों से बड़ा सोशल इंजीनियर इस देश में है ही नहीं है। इन्होंने इस तरह जातियों का समीकरण बनाया के जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट है उनके खिलाफ ज़बरदस्त गोलबंदी हुई, और इनका जो सवर्ण वोटर है वो तो इनके साथ रहा ही। यही कारण है जो 50% का उल्लेख कर रहे थे, हर जगह ये स्वीप कर गए। तो सोशल इंजीनियरिंग के मामले में मैं ये नहीं मानता हूँ कि मोदी जी के जीत से जातिवाद ख़त्म हो गई, जातिवाद से तो बुद्ध भी नहीं लड़ पाए।
अंबिकानंद जी, मैं ये जातिवाद का और ये समीकरणों पे आऊँगा
जी,
पहले ये इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में वो क्या करिश्मा था जो मतदाताओं के सिर पर जादू की तरह चढ़ के बोला।
दो कारण है इसके मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ। देखिए पहला कारण, सबसे पहला कारण कि ये किसी डायनास्टी से नहीं आते हैं। इस चुनाव में इस तरह डिनास्टीज को तमाचा मारा है जनता ने, काबिले गौर है। मुलायम सिंह का परिवार कितने सदस्य हार गए, मदर ऑफ सिंधिया का परिवार कितने लोग हार गए, देवेगौड़ा जी का परिवार, ऐसे इस देश के 25 प्रभावशाली डायनास्टिक फैमिलीज को धूल धूसरित होना पड़ा। उनके अगेंस्ट में मोदी जी का व्यक्तित्व कि एक गरीब घर का आदमी, ये लोगों को समझ में आया। और दूसरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग खासकर कांग्रेस पार्टी की चौकीदार चोर है, ये किस तरह की बात है भाई, ये लोगों को पसंद नहीं आया, कांग्रेस पनिश हुई।
उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, सपा बसपा का जो महागठबंधन हुआ वो कुल मिलाकर 15 सीटों पर सिमट गया
जी।
जातिगत समीकरणों की आप बात कर रहे थे, तो महागठबंधन भी जातिगत समीकरणों के हिसाब से बनाया गया था, फिर क्या हुआ ऐसा कि जातिगत समीकरण सीमित रह गए महागठबंधन के और मोदी का मैजिक चल गया? तो ये क्या मोदी ने राजनीति का व्याकरण, ग्रामर ये कुछ बदली है, कैसी बदली है, इसे कैसे देखा जाए?
बहुत सुंदर सवाल है। देखिए सोनी जी, हुआ क्या इस बात को आप समझिए कि मैंने कहा कि ये जबरदस्त सोशल इंजीनियर है ये दोनों, राम लखन की जोड़ी। क्या है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज भी महंत योगी आदित्यनाथ के पदार्पण के बाद भी हिंदू हृदय सम्राट तो परम आदरणीय मोदी जी हैं। नंबर एक, आपने देखा जिन जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति फॉलो की वो कहाँ सिमट गए। मैं फिर बताऊंगा कि उत्तर भारत में दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, एक राम के नाम एक कृष्ण के नाम, रामपुर और किशनगंज, तुष्टिकरण को फॉलो करने वाले उन्हीं दो सीट में सिमट गए। कांग्रेस की जीत किशनगंज में हुई और सपा की जीत रामपुर में हुई, यह है मुस्लिम तुष्टिकरण का नतीजा। तो जनता ने मोदी जी को वोट दिया, उनके व्यक्तित्व को वोट दिया, स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए वोट दिया
और दिल खोलकर वोट दिया,
दिल खोलकर वोट दिया
जैसा कि आंकड़े बताते हैं।
जी
अगले श्रोता के पास चलते हैं। कौन है हमारे साथ इस समय?
हेलो जी, राजन गुप्ता सर।
जी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं
सर? मोहनगंज प्रतापगढ़ यूपी।
जी गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, अब कुछ मोदी जी का जो कद है वो बीजेपी से बड़ा हो गया है चुनाव नतीजे आने के बाद?
सर ये मैं अंबिकानंद जी से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, और सोशल इंजीनियर दोनों लोग बहुत बेहतर हैं, इस समय कोई नहीं है इनका जोड़ है। लेकिन सर जो देश की और देश के नौजवानों की, बेरोजगारों की, किसानों की, जो वास्तविक जो मुद्दे हैं सर, उस पर चुनाव लड़ा नहीं जाता सर। अब तो सिर्फ गलत दिशा में गुमराह करके, राष्ट्रवाद का एक ढोंग दे करके ये सब सर, इससे तो कुछ ना तो देश का भला होने वाला है, ना तो इस देश के नौजवानों का भला होने वाला है। अब रही सर जात पात की, इतना जहर बो दिया गया है लोगों के बीच में। अब इस देश की इतनी सर अशिक्षित जनसंख्या, जिसको इतिहास भूगोल इस देश का नहीं पता है, उसको सर और क्या पता होगा, उसको सिर्फ जाके कि सिर्फ वोट दे देना है, इतना है कि मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी के यहाँ तक पहुँचाने में सर विपक्षी दल काफी हद तक जिम्मेदार है सर, उनके पास कोई विजन नहीं है सर।
बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अंबिकानंद जी,
जी
जैसा कि हमारे श्रोता कह रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की जब बैठक हुई तो उसमें भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें ये कहा गया कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया। क्या वाकई विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति की थी, नंबर एक, और क्या वाकई उसी नकारात्मक राजनीति को मतदाता ने नकारा है?
नकारात्मक राजनीति को तो नकारा ही है, साथ साथ मोदी जी इस चुनाव में इशू बने इसके लिए भी तो विपक्ष जिम्मेदार है। देखिए इस देश का इतिहास है ये, मोदी जी की चमत्कृत जीत उसी तरह लगती है जैसे इंदिरा जी की हुआ करती थी। इंदिरा जी का एक ही नारा था कि ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। ये बिल्कुल उसी का तर्जुमा है ये चुनाव। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ विश्वमन करके या नेगेटिव प्रचार करके ये जिम्मेदार है। क्यों नहीं, जिसका अभी प्रतापगढ़ के सज्जन जिक्र कर रहे थे, क्यों नहीं ये बेरोजगारी, गरीबी, गिरती अर्थव्यवस्था का जिक्र चुनाव के कैंपेन में हुआ, क्यों नहीं उसके लिए एक लड़ा गया पॉजिटिविटी के साथ?
आप जिक्र कर रहे थे इंदिरा गांधी से, तुलना कर रहे थे अंबिकानंद जी नरेंद्र मोदी की, क्या वजह रही कि तमिलनाडु में स्टालिन, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और ओडिशा में नवीन पटनायक के जो किले थे वहाँ पे मोदी का जादू नहीं चला, उस तरह से भेद नहीं पाए और वहाँ पर क्षेत्रीय दल अपना परचम लहराने में सफल हुए?
देखिए जिन स्टेट्स का आपने जिक्र किया वो तो हैं, और उसके अलावा बंगाल में भी अगर कोई लड़ी तो ममता बनर्जी लड़ी।
बंगाल क्षेत्र पे हम अलग से चर्चा करेंगे, पहले दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं।
जी जी जी, उसको समझिए कि फिर मैं जिक्र करूंगा अपने राष्ट्रगान का कि संघीय ढांचा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये विभिन्न रीजनल कल्चर्स का संगम है हिंदुस्तान। तो जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां वहां अब क्षेत्रवाद के खिलाफ ये लड़ाई जीत नहीं है। जहां जहां कांग्रेस और इनमें डायरेक्ट फाइट है वहां अभूतपूर्व जीत हुई है, इसी बात को तो समझने की जरूरत है।
कांग्रेस से सीधी फाइट की बात कर रहे हैं आप। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान आया है कि चुनावी नतीजे आने के बाद उनका बयान आया, उनका कहना है कि बीजेपी के हिंदुत्व को जैसा झटका पंजाब में लगा वही लहर अन्य राज्यों में भी उठ सकती है। तो पंजाब में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, पंजाब जैसे राज्य में मोदी मैजिक की हवा क्यों निकल गई?
देखिए इसको मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। जब जब नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद सब नेशनलिज्म के बीच लड़ाई होगी तो इतिहास गवाह है उपराष्ट्रवाद जीतती है, इस बात को समझिए। बंगाल में ब्रेक लगाया ममता ने, तमिलनाडु में ब्रेक लगाया स्टालिन ने, जगन मोहन रेड्डी ने लगाया, केसीआर ने लगाया। तो जहाँ जहाँ उपराष्ट्रवाद हावी होगा, जैसे ये खुद किसी ज़माने में गुजराती अस्मिता की बात करते थे और वहीं से बढ़े, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब उन बिंदुओं पे लड़ाई होगी तो राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, और नहीं चला उन इलाकों में।
पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे थे आप, उसमें मैं आऊंगा, उससे पहले दो श्रोता इस समय लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक करके हम बात करेंगे उनसे। कौन है इस समय हमारे साथ?
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
हाँ, मैं डिब्रूगढ़ असम से उमेश कुमार, केंदुगुड़ी चाय बागान से बीबीसी परिवार का बीबीसी इंडिया बोल पर स्वागत करता हूँ।
बहुत स्वागत है उमेश जी आपका भी, रखिए अपनी बात।
सर, मेरा ये कहना है कि मूर्ख दो तरह से बना जाता है, एक पढ़े लिखे और एक बिना पढ़े लिखे। तो भारत में सर, मैं एक अभी दक्षिण भारत की बात हुई थी, केरल का जिक्र करना चाहूंगा। केरल में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा है और वहाँ बीजेपी की नहीं चली, बिल्कुल ही नहीं चली। और हम लोग इधर जो पूर्वोत्तर भारत में हुए, फिर वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या ये इधर ऊपर वाले भारत के नक्शे के हिसाब से, तो वहाँ सर आंख बंद करके बस सिर्फ एक ही बात, जो हमें जो है देश बचाना है, हमें जो है अपने पड़ोसी देश से रक्षा करनी है, इसीलिए मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। आंख बंद करके सभी ने वोट दे दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब अपना बचाए, तो वहां तो इनकी नहीं चल पाई। जहां लोग अच्छे से समझ रहे थे सोशल इंजीनियरिंग को, वहां बीजेपी को नकार दिया गया। इसके बारे में बीजेपी में ना एनालिसिस होती है, ना कोई उनसे पूछता है। सर,
डिब्रूगढ़ असम से उमेश कुमार के बाद एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
हाँ जी, मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ जी।
जी शफी साहब, बहुत स्वागत है आपका भी, रखिए अपनी बात।
मैं आपको नमस्ते कहता हूँ सर। पहले इलेक्शन जीता विकास के नाम पर, इस बार इलेक्शन जीता जो है वो मजहब के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, कम्युनलिज्म नाम पर, मासूम लोगों को हवारने का क्या? हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी सरपंच बढ़ते हैं। जब छोटे मासूम आदमी को कौम की बात करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या क्या कह रहे हैं, ये अपने मतलब के लिए कह रहे हैं। मासूम लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया मजहब के नाम पर, इसलिए ये इलेक्शन जीते हैं बीजेपी, वरना ये इलेक्शन जीत नहीं सकती है, क्योंकि हमारा सत्ता है। इसलिए इलेक्शन जीतने का सिर्फ वाहिद कारण यही हुआ कि कम्युनिस्ट को हमारा गया। सर,
मोहम्मद शफी राजनीति के व्याकरण की तरफ इशारा कर रहे थे, मुझे लगता है। मैं अंबिका नंद जी वापिस आपके पास लौट रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे थे, जहाँ बीजेपी सीटों की संख्या के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बनने के नज़दीक पहुँच गई है। तृणमूल कांग्रेस 22 है तो बीजेपी 18 सीटों पर जीत कर आई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पश्चिम बंगाल हिंदुत्व की एक नई और सफल प्रयोगशाला बन गया है, जो अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए?
ये प्रयास है और आंशिक तौर पे सफल हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी बज रही है। और हमें बंगाल के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, वहाँ की जो सब नेशनलिज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बिना पे पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बंगाल का 3 बार विभाजन हो गया, कहीं उपराष्ट्रवाद का जोर पकड़ा तो वो एक खतरे की घंटी है। इस तरफ मैं दर्शकों का को आगाह करूंगा।
अंबिकानंद जी, लोकसभा के इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की आंधी कुछ इस तरह चली कि कांग्रेस के 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे 9 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए, जिनमें दिग्विजय सिंह, शीला दीक्षित और भूपेंद्र हुड्डा जैसे दिग्गज शामिल हैं।
जी,
जाहिर सी बात है इसका श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया जा रहा है।
जी,
ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि ये बीजेपी ने हरा दिया, ये असल पहचान नरेंद्र मोदी की थी, जो लहर चली, हवा चली, जिसके वजह से ये कांग्रेस के पूर्व 9 मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए सोनी जी, एक कहावत है हिंदी में कि असफलता लावारिस होती है। आप कसीदे पढ़ते जाइए कि कांग्रेस से क्या क्या गलतियां हुई, और सफलता के 1000 बाप होते हैं। क्यों सफल हुए इसको क्लेम करने के लिए 1000 नहीं लाखों कारण ढूंढ लिए जाएंगे। तो ये वक्त वक्त की बात है। हाँ, ये सच्चाई है कि आज कांग्रेस, मेरे एक मित्र ने आज कहा कि इसका नाम रख देना चाहिए ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ केरला, वही एक अच्छा प्रदर्शन की है और उसका स्वरूप बदला हुआ दिख रहा है। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन का के लाइफ में एब्सेंट टाइड्स आता है। इसी भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा, 2 सीट पे भी सिमट गई थी और वहाँ से किस तरह खड़ी हुई। हाँ, वहाँ कुछ नेतृत्व का संकट है और बहुत से कारण हैं, इस पे विश्लेषण होगा, लेकिन मैं विदाउट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितना मेहनत 5 साल ये कैंपेन मोड में 5 साल रहे हैं मोदी जी, वो कांग्रेस भूल चुकी है वो मेहनत। हमने खुद मुलायम सिंह यादव को 20-20 घंटा मेहनत करते देखा है, वो अखिलेश यादव कभी कर सकते हैं? 7 जन्म में नहीं। लालू यादव वो पॉलिटिक्स करते थे तो 24 घंटा में 22 घंटा और एक्टिव रहते थे, वो तेजस्वी यादव कर सकते हैं क्या? मोदी जी और शाह जी बहुत बहुत मेहनत करते हैं और लक्ष्य इनका साफ है।
शायद यही वजह है कि बिहार में लालू यादव की पार्टी को इस बार लोकसभा में
जीरो
मिला है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने उन नेताओं को दरकिनार किया जिनकी उम्र 75 साल के दायरे में आ चुकी थी, इसी वजह से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं के बीजेपी ने बड़ी बेरहमी से टिकट काटे। इसके बावजूद बीजेपी ने पहले से ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय मतदाताओं की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है?
बहुत अच्छे से पकड़ा है। और मैंने कहा ना कि दो चीज़ और याद रखिए सोनी जी, कि देर इज़ ए थिंग कॉल्ड पावर ऑफ ब्रांडिंग। जिस तरह मोदी जी के टीम ने मोदी जी की ब्रांडिंग की है इस सूचना युग में, वो अभूतपूर्व है। और ब्रांड में पावर होता है, और वो आज आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी ब्रांड से कहीं ज़्यादा बड़ी मोदी ब्रांड है।
इसी बात पर एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं जल्दी से। कौन है इस समय हमारे साथ?
हाँ सोनी जी, मैं पूसद से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ
जी। बहुत स्वागत है आपका।
हाँ जी सोनी जी, ये जो मोदी जी ने जो इतनी जीत हासिल की है उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो जिस भी प्रदेश में जाते थे या जिस जगह जाते थे, जिस जगह भाषण हुए उनके, वहाँ के वो लोकल जो वहाँ की समस्याएं हैं, लोकल वो वहाँ उसका वो करते थे, वहाँ पे उठाते थे, इसके वजह से उनको भारी जीत मिली है सर।
ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं।
वो हैं जबरदस्त हैं, और वो न सिर्फ नब्ज पहचानते हैं बल्कि जनता की कमजोरी भी पहचानते हैं, और ये जानते हैं कि जनता को इस वक्त क्या चाहिए, और उस तरह कम्युनिकेट करते हैं। और जनता आप देखते हैं जहाँ जाते हैं और किस तरह सुंदर ऑर्गेनाइज होता है, इनके आने और जाने से पहले से मोदी 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 शुरू हो जाता है, और जब चले जाते हैं तो भी मोदी 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 होता रहता है। जनता भी जानती है कि मोदी करोगे तो जीतोगे, और ये स्वयं जानते हैं जब तक मोदी मोदी चलेगा मोदी जी जीतेंगे।
अंबिकानंद जी, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में तो आ गए नरेंद्र मोदी
जी,
अब आपको क्या लगता है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, या कोई चुनौती उनके सामने होगी भी या नहीं होगी?
चुनौती तो मुंह बाए खड़ी है अर्थव्यवस्था की। आपने थोड़ा सा बहुत खूबसूरती से उसका जिक्र किया कि जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो गया है, गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है, कंज्यूमर गुड्स पे अलग संकट है, व्यक्ति बैंकों की व्यवस्था चरमराने के कगार पे खड़ी है। तो अर्थव्यवस्था को देखिए, भाषण देना, कम्युनिकेट करना, चुनाव जीतना एक चीज़ है, चुनाव जीतना और जीतने के बाद सरकार बखूबी चलाना ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है। अब उनकी असल अग्नि परीक्षा शुरू होगी।
दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने ही वाले हैं।
जी जी जी,
घड़ी की सुइयों की तरफ देखें तो अब भारत में कुछ ही देर में बजेंगे 8:00, और घड़ी की सुइयां अब हमें अनुमति नहीं दे रही हैं इंडिया बोल को यहीं विराम देना होगा। अंबिकानंद जी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा को सार्थक बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
और शुक्रिया दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। अगले हफ्ते इंडिया बोल लेकर इसी समय फिर हाजिर होंगे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हिंदी .com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।